और जब सूर्योदय होता है और दसों दिशाओं में अपनी किरणें फैलाते हो तो सब प्राणियों के इंद्रियों के साथ भी सूर्य किरणों का संबंध बन जाता है। एक प्रकार से सारे जगत को भी अपने किरणों के अंदर समेट लेते हो, व्याप्त कर लेते हो। जब अपनी रोशनियों को सर्वत्र सूर्य फैला देते हैं तो एक प्रकार से क्या हुआ, आप सूर्य प्रकाश के अंदर सारा जगत आ गया, तो सारे जगत को भी सूर्य ने समेट लिया, अपने अंदर ग्रहण कर लिया। तो इसलिए आप समस्त जगत को अपने प्रकाश के अंदर स्वीकार करने वाले होने से सूर्य है, हे सूर्य, और आप ही प्रजापति जो परमेश्वर हैं उनकी प्रथम संतान हैं, इसलिए प्राजापत्य हैं। सूत्रात्मा ही तो भगवान की प्रथम संतान है, सूत्रात्मा कहो या हिरण्यगर्भ को, इसलिए उनको कहा जाता है प्राजापत्य, प्रजापति के पुत्र प्राजापत्य। तो इस प्रकार अनेक नामों से उपासक अपने इष्ट देव आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष को संबोधित कर रहे हैं और संबोधित करके एक प्रकार से अपने इष्ट देव का चित्त अपने प्रति आकर्षित कर रहे हैं, अपनी बात उनसे मनवानी है। तो पहले जिससे आपको अपनी बात मनवानी है उनके मन को अपनी बात सुनने के लिए अपने प्रति आकर्षित करना पड़ेगा। इसलिए पूषण, एकर्ष, यम, सूर्य, प्राजापत्य इन अनेक नामों से अपने इष्ट देव को संबोधित करके एक प्रकार से इष्ट देव के मन को अपने प्रति आकर्षित कर लिया उपासक ने, और ये सब अंतिम समय में हो रहा है। अब उपासक अपनी बात उपास्य के सामने रख रहा है कि रश्मिन व्यूह, यानी रश्मियों को आप हटा दो। पूर्व मंत्र में जिसको हिरणमय पात्र शब्द से कहा था उसी को यहां पर एक प्रकार से रश्मि शब्द से कहा जा रहा है। ये जो आपकी रश्मियां हैं, रोशनियां हैं, किरणें हैं, इनको आप हटा दो, क्योंकि यही तो उपास्य नहीं है, उपास्य का स्वरूप नहीं है। ये तो एक प्रकार से उपास्य का बाह्य आवरण है और इसके अंदर आदित्य मंडल के अंदर उपासक का इष्ट देव है उपास्य। तो ये कह रहा है कि आप अपने रश्मियों को हटा दो, विभव का अर्थ हटा दो। तो आदित्य मंडल ने, मंडलस्थ पुरुष ने कहा कि आदित्य मंडल तो एक प्रकार से मेरे शरीर के तरह शरीर है, तो जैसे आप अपनी त्वचा के रंग को अपने से अलग नहीं कर सकते, कोई काला व्यक्ति है और उसका दोस्त उसे कहे कि तुम्हारा काला रंग मुझे अच्छा नहीं लगता, उसको हटा दो, तो उसका रूप है, स्वरूप है, वो कैसे हटाएगा, तो स्वभाव है। ऐसे ही आदित्य ने कहा कि रश्मियां तो मेरी अंग है, मेरा स्वरूप है, इसे हम कैसे हटाएंगे। स्वरूपभूत धर्म को हटाया नहीं जा सकता, किसी का गोरापन है तो उस गोरेपन को वह जीवन भर साथ ही रखता, हटा नहीं पाता। कालापन है तो कालापन भी उसका स्वरूप है, उसे हटाया नहीं जा सकता स्वरूपभूत धर्म को। ऐसे सूर्य का तो स्वरूप ही है रश्मियां, तो हम अपनी स्वरूपभूता रश्मियों को अपने से कैसे अलग करें। तो ये समस्या इष्ट देव ने उपासक के सामने रखी रश्मियों को हटाने के विषय में। तो उपासक कहता है कि ऐसा करिए कि हमें आपके रश्मियों से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन मुझे इन रश्मियों को हटाने के लिए इसलिए कहना पड़ रहा है कि ये मैं आपका सायुज्य प्राप्ति में प्रतिबंधक बनी हुई है, आवरण है, और ये यदि अपना आवरण भाव छोड़ दें तो इनसे हमारा कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। इसलिए आप क्या करिए कि अपनी तेजस्वी जो संतापक रश्मियां हैं इनके तेज को तो कम कर सकते हैं। जैसे प्रातःकालीन उषःकालीन जो सूर्य है उसको देखने में आपके आंख को कोई कष्ट नहीं होता, और मध्यान्हकालीन सूर्य को देखने में कष्ट होता है, वह संतापक रश्मियां हैं। तो रश्मियों से हमें द्वेष नहीं है, रश्मिगत जो संतापक तेज है जो हमें इष्ट देव को देखने में बाधक बन रहा है, वो जो प्रतिबंधक स्वरूप है रश्मियों का संतापक तेज, उसको मात्र आप समेट लीजिए, ये तो आप कर सकते हैं। इसलिए उपासक ने कहा कि समूह, और समूह के साथ जोड़ दो दूसरी लाइन में जो पहला शब्द है तेज, और ते को भी ते तेज समूह, ऐसा एक वाक्य बनेगा। इसका अर्थ होगा कि आपका आपके दर्शन में प्रतिबंधक जो रश्मियों का तेज है, संतापक तेज प्रखरता रश्मियों में, उसे आप उपसंहृत कर लो, समेट लो, समूह का अर्थ है, यानी रश्मि की प्रखरता को कम कर दो, जिससे कि मैं इन सूर्य आदित्य मंडला अंतर्गत आपके वास्तविक स्वरूप का ठीक से दर्शन कर सकूं। यही यहां पर इस प्रकार यहां तक तो ते तेज समूह अपने साधना के फल की प्राप्ति में जो प्रतिबंधक है उसे हटाने के लिए, प्रतिबंधक को निवृत्त करने के लिए प्रार्थना हुई। अब इष्ट देव ने ऐसी कल्पना करो कि साधक को ये प्रश्न किया कि तुम रश्मियों के प्रखरता को क्यों कम कराना चाहते हो, मेरे से क्यों समेटना चाहते हो तेज को। कहते इसलिए कि ते यत कल्याणतमम रूपम तत्पश्यामि, आपका जो अति कल्याणकारक रूप है, शोभनतम रूप है, उस रूप का मैं ठीक से दर्शन कर सकूं, उसका अनुभव कर सकूं आत्मरूप से, तो ते कल्याणतमम रूपम पश्यामि। यद्यपि ये जो बाह्य रूप है हम अभी चर्म चक्षु से आदित्य का देख रहे हैं, ये भी कल्याण रूप है, संपोषक रूप है। सूर्य का ये सूर्यमंडलात्मक जो रूप है वह भी कल्याणकारक है, जगत सूर्योदय और सूर्यास्त के द्वारा एक प्रकार से जगत का संपोषण हो रहा है ना, ऊर्जा मिल रही है, अन्न रस भी बन रहा है और जगत का पालन भी हो रहा है। इसलिए जगत का संपोषक ये बाह्य रूप भी सूर्य का होने के कारण इसे कल्याण कहा जाएगा, और यहां पर तो कल्याणतम शब्द का प्रयोग हुआ है, तम प्रत्यय है, तम प्रत्यय होता है कहते हैं कल्याण कारक तो अनेकों रूप हैं, लेकिन कल्याणतम रूप कहते अनेक कल्याणकारक रूपों में जो अतिशय कल्याणकारक है, सर्वश्रेष्ठ है, उसके लिए तम प्रत्यय का प्रयोग होता है। और वो यहां पर तम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है कि जो आपका अतिशय कल्याण यानी शोभनतम रूप है, सुंदरतम रूप है, उस रूप का मैं अनुभव कर सकूं, उस रूप के अनुभव में बाधक है यह तेजस्वी रश्मियां, उनको समेटने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। यहां तक तो इष्ट को खूब आदर दे करके अंतिम समय में उपासक इष्ट से प्रार्थना कर रहा है और इष्ट की इसने अहंग्रह उपासना की है और उस उपासना का परिपाक भी हुआ है। केवल उपास्य में और उपासक में तो अध्यात्म और अधिदैव उपाधि को लेकर के मात्र भेद हैं और स्वरूप तो उपाधि को हटा दे तो दोनों का कोई भिन्न भिन्न नहीं है, एक है। और उपासक अपने उपास्य को ये कह रहा है कि ये नहीं समझना कि जैसे आपके द्वार पर कोई भिखारी आया हुआ है और भिखारी के तरह मैं आपको याचना कर रहा हूं, ऐसी बात भी नहीं है। ये तो मैं अपना अधिकार आपको मांग रहा हूं। अंतिम समय में उपासक ऐसे अपने इष्ट से एक प्रकार से भावना की श्रद्धा से, श्रद्धा के साथ लड़ाई करता है, अपना अधिकार मांगता है। ये नहीं समझना कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो या तो आपका नौकर हूं, नौकर के तरह याचना कर रहा हूं, या भिखारी के तरह भीख मांग रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। अपितु ये समझना कि मैंने जीवन भर आपका आत्म रूप से चिंतन किया है और यह चिंतन मेरा परिपक्व भी हुआ है, इसलिए आप में और मेरे में कोई भेद भी नहीं है। ये यहां पर अपनी अहंग्रह उपासना की याद दिला रहा है उपासक कि यो असौ असौ पुरुषः सो अहम अस्मि। तो यो यानी जो, असौ यानी आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष, तो दो बार असौ असौ शब्द का प्रयोग है। एक असौ शब्द का तो अर्थ प्रयोग है कि अधिदैव उपाधि अंतर्गत पुरुष, पहला असौ शब्द। अधिदैव उपाधि है आदित्य मंडल, आदित्य मंडलांतर्गत जो पुरुष है, और दूसरे असौ शब्द का अर्थ है उस आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष का जो स्वरूप बताया है, अलग अलग अवयव बताए हैं। तस्य भूरिति शिरः, भूरिति बाहु, स्वरिति पादो, ऐसा बृहदार इसी मंत्र की व्याख्या करते हुए बृहदारण्यक उपनिषद में आया है पांचवें अध्याय में कि आदित्य मंडल अंतर्गत पुरुष का स्वरूप क्या है कि वो व्याहृति अवयव वाला है। व्याहृतियां कहलाती हैं भूर भुव स्व, ये शब्द इनको व्याहृति कहा जाता है। तो भुव यह आदित्य मंडल अंतर्गत पुरुष का शीर है, ऐसे उसके स्वरूप का वर्णन है बृहदारण्यक उपनिषद में। और भुव नाम की जो दूसरी व्याहृतियां हैं वह उसके दो बाहुओं के तरह बाहु हैं, और स्व नाम की जो व्याहृति है वह उसके पैर के तरह, पाद के तरह पाद हैं, प्रतिष्ठा है। इस प्रकार ये स्वरूप वर्णन है आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष का। तो पहला जो असौ शब्द है उससे तो अधिदैव उपाधि आदित्य मंडलस्थ पुरुष को लिया गया और दूसरे अशो शब्द से लिया गया उसका जो व्याहृति अवयवात्मक स्वरूप है उस स्वरूप को और उस स्वरूप वाला जो पुरुष है उसे पुरुष इसलिए कहते हैं कि वह आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष है समष्टि प्राण एवं समष्टि बुद्धि उपाधिक इसलिए समष्टि प्राण एवं समष्टि बुद्धि रूप से सब में पूर्ण है व्याप्त है इसलिए पुरुष है और पूर कहते हैं स्थूल शरीर को और समष्टि स्थूल शरीर में भी वो स्थित है इसलिए पूरी शयनात पुरुष इस व्युत्पत्ति के अनुसार भी पुरुष इस नाम से कहा जाता है आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष को। तो वो जो पुरुष है आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष जिसको अभी उपासक ने पूषण एकर से यम प्राजापत्य इत्यादि नामों से कहा वह पुरुष कोई मेरे से भिन्न है कर्मफल विधाता ऐसी बात नहीं है लेकिन उसका मैंने आत्म रूप से चिंतन किया है इसलिए कहता है सो अहम अस्मि वह आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष यानी आप स्वयं मैं हूं मैंने आपका आत्म रूप से चिंतन किया है अहंग्रह उपासना की है इसलिए आप में और मेरे में कोई भेद नहीं है भेद प्रतीत हो रहा है अध्यात्म उपाधि को लेकर के इसलिए आप औपाधिक भेद को लेकर के ये नहीं समझना कि ये मेरी प्रार्थना कर रहा है तो कोई मेरे नौकर के तरह ही मुझे याचना कर रहा है या भिखारी के तरह भीख मांग रहा है ऐसी बात नहीं समझना आप में और मेरे में ये मेरा दृढ़ निश्चय है कि कोई भेद नहीं है। योसा वसो पुरुष सोहमस्मि और ये जो मैंने जीवन भर किया है और आप कर्मफल विधाता है तो आप मेरे किए हुए का ठीक ठीक से अनुसंधान करके उसका फल दीजिए और शास्त्र बताता है अहंग्रह उपासना का फल है जब अहंग्रह उपासना पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है मनुष्य शरीर में रहते रहते तो उसका फल है आपका सायुज्य तो आपका सायुज्य मुझे आप प्राप्त कराइए ये मेरा अपना अधिकार है। तो इस प्रकार ये अंतिम समय में कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठाई उपासक प्रार्थना कर रहा है और वो जानता है कि अध्यात्म उपाधि भूत जो स्थूल शरीर है ये यही छूटेगा और वो जान रहा है कि हमें निर्विशेष ब्रह्म का आत्म रूप से अभी साक्षात्कार भी नहीं हुआ है इसलिए इस स्थूल शरीर में से सूक्ष्म शरीर निकलेगा मेरा तो सूक्ष्म शरीर का क्या हो जाए यहां से निकलने के बाद में सूक्ष्म शरीर कहां पहुंचे और इस स्थूल शरीर की भी क्या गति हो ये सारी व्यवस्था उपासक अंतिम समय में उपास्य को बता रहा है कैसे इन दोनों की क्या क्या स्थिति हो जाए। सत्रव्य मंत्र में स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर की स्थिति का वर्णन है जब मेरा प्रारब्ध तो समाप्त ही हुआ है इस शरीर में रहने का इसलिए सूक्ष्म शरीर तो इस स्थूल शरीर से निकलेगा वह किसी वेष्टि स्थूल शरीर में प्रविष्ट न हो अपने वेष्टि भाव में ही बना न रहे अपितु अपने समष्टि भाव को प्राप्त कर लें इसके लिए उपासक प्रार्थना कर रहा है। और ये जो वेष्टि स्थूल शरीर है साधक का ये जब इसमें से सूक्ष्म शरीर निकल जाएगा उसके लिए प्रार्थना कर रहा है कि फिर भस्म हो जाए इसका जो होना है वो हो जाए। तो सत्रवे मंत्र का उच्चारण करिए वायुरनीलमृतमथेदम् भस्मान्तं शरीरं ओम क्रतो स्मर कृतं स्मर ओ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतु शब्द के कई अर्थ होते हैं। यहां क्रतु शब्द का अर्थ है संकल्प। क्रतु शब्द संकल्प अर्थ में भी आता है। तो ओम क्रतो, इसमें क्रतो शब्द से संबोधित कर रहा है उपासक, क्योंकि उपासक ने जीवन भर क्रतु यानी संकल्प किया है। संकल्प यानी एक प्रकार से अंतकरण की वृत्ति है। सम्यक वृत्ति को अंतकरण के संकल्प कहते हैं। और जीवन भर किस प्रकार का संकल्प किया है, चिंतन किया है कि जो आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष है, व्याहृति अवयव वाला, वही मैं हूं। सूत्रात्मा का आत्मरूप से चिंतन किया है, संकल्प किया है। और आपके चित्त की वृत्ति जिस पदार्थ के आकार की बन जाती है, एक प्रकार से उस पदार्थ को अपने में समेट लेती है। आपके द्वारा आपके चित्त की वृत्ति इस माला के आकार की बन गई। माला को देखा तो एक प्रकार से माला को आपके चित्त वृत्ति ने व्याप्त कर लिया। आपके चित्त वृत्ति के अंदर वो माला आ गई। तो माला के रूप वाली बन गई चित्त वृत्ति। ऐसे ही जीवन भर आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष का चिंतन किया है जिसने, तो वह आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष इसके संकल्प रूप बन गया, ऐसा समझना। और इसलिए जीवन भर संकल्प आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष का ही करने के कारण वो संकल्पात्मक ही पुरुष है, ऐसा ध्यान में रख करके एक प्रकार से हे क्रतो ऐसा संबोधन उपासक कर रहा है। और ये कह रहा है कि मेरा जो ये सूक्ष्म शरीर है, वायु शब्द से तो वायु शब्द का वाच्यार्थ तो होता है एक प्रकार से वायु, हवा। लेकिन यहां हवा से कौन सी हवा लेना है, आध्यात्मिक जो हवा है, वायु है, वो है प्राण, अध्यात्म प्राण। और वो अध्यात्म प्राण जो है वो उपलक्षण है किसका, पूरे सूक्ष्म शरीर का। इसलिए वायु शब्द से ही पंच प्राण, पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया और मन बुद्धि रूपी ये जो 17 तत्व का समूह है सूक्ष्म शरीर, जिसे लिंग शरीर नाम से भी कहा जाता है, उसे समझना। तो वायु शब्द का अर्थ हुआ सूक्ष्म शरीर, जो अभी उपासक शरीर में विद्यमान है। वो क्या करें, तो इन सूक्ष्म शरीर अंतःपाती 17 तत्वों में से प्रत्येक तत्व का अपना अपना एक अधिदैवात्मक रूप है। वे अपने अपने अधिदैव रूप को प्राप्त कर लें। इसके लिए यहां पर प्रार्थना है कि वायुः अनिलम, ऊपर से जोड़ देना प्राप्नुयात। जब इस शरीर से हमारे प्राण निकल जाए तो वह अनिल को प्राप्त कर ले। अनिल भी कहा जाता है वायु को, वो समष्टि वायु है। समष्टि वायु है समष्टि प्राण सूत्रात्मा, और उस सूत्रात्मा का विशेषण है अमृत। अमृत अनिल को प्राप्त कर ले। अमृत अनिल है समष्टि प्राण सूत्रात्मा। तो मेरा वेष्टि प्राण समष्टि प्राण में विलीन हो जाए, इसके लिए प्रार्थना है। और फिर वायु ये उपलक्षण होने से चक्षु क्या करें, चक्षु की जो अधिदैव देवता है आदित्य तद्रूप हो जाए। मन चंद्रमा रूप हो जाए। वाक अग्नि रूप हो जा, ऐसे ये सब प्रार्थना है। इस पर विचार हम लोग फिर कल करेंगे, वायु अनिलम इत्यादि पर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो दुर्वात्मेति मूर्तिभेद विभागिने योमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।
हरि ओम। पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आज 24/11 शनिवार अब शांति पाठ होगा। हरिओम।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।